बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सुई पावन सुई शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। चार सिनेमा देखा, एक बैजू बावर बहुत अच्छा लगा। वो पागल होके पता नहीं क्या ढूंढ रहा था, बस उतना ही। एक तुलसीदास, औरत ने चार झाड़ दे दिया भागा, औरत ने झाड़ दिया भागा, इतना हमें ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान के बीरे में भटक रहे हैं जानता, वो अच्छा लगा। और एक अमर सिंह राठौर मुख ड्रामा था शायद, तो भंगी का लड़का जो गाया करे, उस समय तो गाने थे, गुरु महाराज की शरण में आए तो सबके सब गाने भजन हो गए, भजन में सहायक हो गए। दो कदम चले फिर बिछुड़ गए, एक गाना गुनगुनाया करे वो लड़कवा, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, दो कदम चले फिर बिछुड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, आशाओं के तिनके चुन चुन कर सपनों का महल बनाया था, तूफानों से तिनके बिछुड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। उस समय तो गाना था, गुरु महाराज की शरण में आए जंगल में अकेले बैठ के, घोर जंगल में आगे कोई नहीं पीछे की गुनगुनावे, तो साधना की विरह की लड़ी कड़ी बन गई, जिन्हें हम साथी समझे थे पता नहीं कहाँ छूट गए, जो अरमान जोड़े थे खत्म हो गए। लड़कपन में पांच मांग मांगते थे हम, एक बार रेस में विश्व में फर्स्ट आ जाए, एक बार फुटबॉल में फर्स्ट आ जाए, लौंडे तो लौंडे यार, और मांगेंगे क्या? ऐसे ही पांच उठंग पड़ रहा है। पढ़ाई में फर्स्ट आ जाए, एसपी हो जाए, ये बेवकूफी नहीं। हम खा जाने क्या होता है, हमें नहीं मालूम था कमा के खाना पड़ेगा। हम सोचते थे दुनिया ऐसी है, कुल छर्रे उड़ाओ। ये जब पता चला इतने में तुम इधर चले आए। जब हम आए तो गुरु महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे। एक भजन था बैजू बावरा वाले में, बैजू बावरा का ही है, बाद में पता चला। उस समय गाना था केवल, ओ दुनिया के रखवारे सुनो दर्द भरे मेरे नारे, सुनो दर्द भरे मेरे नारे, आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई, कभी आशा है तो कभी निराशा, कभी बिटिया की सदा धूमधाम से होगी तो कभी टूट गई। क्या है, एक आंख में आंसू है तो दूसरे में आंसू। आंसू निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के संग जुदाई, जा देख लिया हर जाई हो, जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले, आग बनी सावन की बरसा, फूल बने अंगारे। मुसीबत आती है तो ऐसा ही लगता है, नागिन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे, हो किस्मत फूटी आसन टूटी, पाँव में पड़ गए छाले ओ दुनिया के रखवारे, ओ दुनिया के रखवारे, सुनो दर्द भरे मेरे नारे, सुनो दर्द भरे मेरे नारे। ये पूरा भजन अब हमें याद है, उस समय दो लाइन याद थी। बहुत काम का, जंगल में अकेले बैठ जाए तो भगवान की प्रार्थना में काम आने लगा हमारे। ओ दुनिया के रखवाले सुंदर दर्द मेरे नारे। जब लाखों गुप्तचर विभाग लौट आया पांडवों का कहीं पता नहीं, तब कुंती विकल हो गई। वन में ही सही, मेरे पुत्र जिंदे रहते हैं, कहीं पता नहीं चला हो क्या गया, कहीं दुष्टों ने मार तो नहीं डाला। तब एक दिन बहुत रोई रात में विकल होके बड़े सवेरे भगवान कृष्ण हाजिर हो गए। बोले फुआ, आज तुमने बहुत याद किया, कहो तो तुम्हारे लड़कों को आज बुलवा दें और कल राज्य अभिषेक कर दें। तब रोती हुई कुंती ने कहा, अब केशव अब हमें अपने पुत्रों की कोई चिंता नहीं, अब केवल हमें एक वरदान दे, मुझ पर दुख पड़े, भजन तो मैं बचपन से कर रही थी, आए कभी नहीं, दुख में हृदय की उस गहराई से आप पुकार निकली, उस गहराई से सुमरन निकला, आप दौड़े चले आए, ऐसा दुख सदैव मिले प्रभु कि जब पुकारूं तब आप हाजिर हो जाया करें। कुंती ने दुख मांगा, तो रही मन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, इतने हित या जगत में जानी पड़े सब कोई, इतने से अनहिते से सब जगत में देखने को जानने में आ जाते हैं, विपदा हूं भली थोड़े दिन हो, जब आपकी तरफ आ गए एक सुखलाल यादव विरह सुनावे, हमें नहीं समझ में आया कि क्या बकवास कर रहा है, ध्यान दिया तो वो भी काम का निकला। मनुष्य जैसा विचार होता है वैसा ही समझा करता है, तो असुरा के घी वो भाषा है, अब गला हमारा बदल गया, असुरा के घी सुनहिया के बाती के भीतर बरेला दिन राती यरा के भीतर आश्रा, वो किस्मत फूटी आसने टूटी है ना, वही मिलता जुलता है, आश्रय की भविष्य। जब भगवान कृष्ण जाने लगे मथुरा गोकुल से, मामा कंस का संदेश आया, अक्रूर लेके जाने लगे, सब ग्वाल बाल मना कर दिया, यशोदा बोले मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कृष्ण भगवान तो जानती थी हमारा आने का यहाँ प्रयोजन क्या है, बोले माई क्या इतना मक्खन खिलाया दूध पिलाया, तुम्हें अपने बच्चे पर इतना भी विश्वास नहीं है, वो कंस हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बोले बेटा विश्वास तो है, तो फिर तुम बेफिक्र हो, मैं 10 दिन में ठीक ठाक करके चलाऊंगा। मम्मी को चरण छुआ चल दिया, तू गोपियां मचल गई, रास्ते में लेट गई, बोले तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते कन्हैया, रथ ऊपर से ले जा, हम मर जाएंगी तो सांस रहेगी, जिंदा आदमी दुख भोगता मुर्दा नहीं भोगता, हमें मार डालो चले जाओ। तब कृष्ण रथ से उतरे, एक एक से मिले, गले मिले, बोले अरे तुम ननिहाल नहीं गए क्या, बोले गई तो थी, तो मैं ऐसा भागा, एक बार भी ननिहाल नहीं गया, मामा से गले मिलके मामा की गोद में खेल के 15 दिन में लौट आऊंगा, क्या एक दिन में ननिहाल जाने की मुझे छुट्टी नहीं दोगे तुम लोग, हमें नहीं मालूम था तुम लोग इतनी निर्दयी हो, बोले यार कहता तो ठीक है। ये बात तो सही है, आ जाओगे ना, बोले बिल्कुल एकदम। उन्हें समझा बुझा के निकल, गोपियों को बेवकूफ बनाना कृष्ण के लिए कितनी बड़ी बात, कौन बड़ी बात थी, निकल तो गए, ले फिर लौटे कभी नहीं, विकल गोपी है, भगवान ने कहा था 15 दिन में आएंगे, भगवान झूठ नहीं बोलते। तो असरा के घुआ सनैया के बाती, आसरा आस दिला के गए तो है घी, और भगवान के चरणों में अटूट प्रीति स्नेह है वो है बाती, और ये स्नेह की भक्ति आज हृदय में है, स्नेह हृदय में है तो ही रखे वितरा बरेला दिन राती। अब वहां से कोई संदेश नहीं मिलता, चिट्ठिया हो तो सब के उबाचे भागन बाचे कोई विधिनवा बैरी हो गे ना। चिट्ठी होती तो सब कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन भाग्य का लिखा पढ़ने वाले बिरले होते हैं। तो चिट्ठिया हो तो सबके बाचे भागन बाचे क्यों। और भाग लिखता है विधाता, ऐसा छिपा के लिख दिया भीतर, विधिनवा बैरी हो गए ना। हमको तो पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आवे कोई पढ़ दे रे पतिया, आके रे लिख दे मेरे दिल की बतिया। हमको तो पढ़ना नहीं आता, कोई पढ़ दे इस पत्ती को कि भाग्य में क्या लिखा है, हमारे हृदय में भगवान का मिलन लिखा है कि नहीं। अगली लाइन में कहते हैं, तू दर्द के दिया ना, भगवान का विरह एक वेदना है। मीरा माई कहती है, येरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, तू दर्द की मारी बन बन डोलू बैद मिला नहीं कोई, तू मीरा की तब पीर मिटेगी, मीरा की तब पीर मिटेगी जब बैद सांवरिया होए, जब भगवान खुद बैद बन के चले आवे तब पीर। पीर तो है भगवान के दर्शन की, तो दर्शन होगी तब मिटेगी, कोई शरीर में फोड़ा तो है नहीं कि बैद चीर देगा कोई। तो आसरा के घिवा सनेहिया के बाती, ओ दर्द के दिया ना जरे दिन राती। और दर्द कैसा है, रात दिन भगवान के विरह की वेदना इतनी प्रगाढ़ है। दर्द वे बागहना दर्द वे सिंगार बा, दर्द के देवता बसिन मोरी छाती, दर्द के दियना जरे दिन राती। दर्द कही भगवान के विरह का प्रेम का, दर्द ही गहना है। भगवान के प्राप्ति के लिए जो तड़प है उसके लिए कौन सा गहना लगेगा, इंद्रियों का संयम, मन का दमन, धारणा ध्यान, यही तो गहना लगता है। दर्द वे गहना कि भगवान एक प्रेमास प्रेमी भगत को क्या क्या संयम की साधना चाहिए, वो है गहना। दर्द वे सिंगार बा, उसके लिए सिंगार, उठना बैठना संयम, टाइम टेबल, ये है उसका सिंगार। और जैसी जिसकी साधना का स्तर है, दर्द के देवता बसिन मोरी छाती, जैसा हृदय में प्रेम है उसी अनुपात में भगवान हृदय में निवास करते हैं। जैसी जिसकी भक्ति जैसी प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा यही रीति। अर्जुन को बहुत विश्वास था कि मेरे जैसा भगत कोई नहीं, कई बार पटकनी खा गया। जो राज्य अभिषेक युधिष्ठिर का हो रहा था, महाभारत समाप्त हो चुका था, तो बोले भगवान कोई राजा अभिषेक में आया नहीं हो, चक्रवर्ती सम्राट के अभिषेक में, तो पता लगा कि मालव देश का एक राजा नहीं आया। बोले चलो, उसको किस बात की गर्मी है, रथ घुमा दिया तो बाउंड्री वाल पर एक घुड़सवार घूम रहा था। बोले कौन हो तुम? बोले यहाँ का युवराज। तुम्हारा नाम क्या? बोले उत्तथ्य। जानते हो हम कौन है? बोले अभी तो नहीं पता चला, ये वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है, मैं महाभारत विजेता गांडीवधारी अर्जुन द्रोण शिष्य। बोले आप हो सकते हैं, तुमने हमको प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले अर्जुन ये भूल तुमसे हुई है, मैं पहले देखता तो प्रणाम करके वार्ता आरंभ करता, पहले तुमने मुझको देखा है, तुम्हें प्रणाम करके ही वार्ता आरंभ करना चाहिए था, भूल तुमसे हुई अर्जुन हमसे नहीं। तो तहस में आके अर्जुन ने चिट्ठी पकड़ा दी, जाओ अपने राजा को चिट्ठी दे दो। राजा के मुकदमा लगा हुआ था, दो लड़के 15-16 साल के लड़ रहे थे। बोले राजन पिताजी ने बगीचा बराबर बराबर बांट दिया, हमारे बगीचे में जो सुगन ने आम गिरा दिया था, मुझसे बगैर पूछे छोटे भाई मुनि ने उठाया और खा लिया, इसने चोरी किया है, राजन इसको दंड दीजिए। वृद्ध राजा ने कहा भागो भागो, ये छोटे छोटे मुकदमे यहां नहीं चलते। बोले हम आपको श्राप देंगे, आप राज करने योग्य नहीं है, छोटे छोटे कांड करते करते तो ये लड़के बड़े कांड तक पहुंच जाते हैं, एक दिन फांसी पे चढ़ जाते हैं, आप प्रजा को सुधारना नहीं जानते, आपको हम श्राप देंगे। बोले बच्चों श्राप मत दो, लियो मैं न्यायाधीश नियुक्त कर देता हूं, तुम ही न्याय कर लो। तो बड़े लड़के का नाम था लिखित, उसने कहा मैं छोटे भाई मुनि जिन उंगलियों से आम उठाया उन उंगलियों को कटवाता हूं। बदी काया उंगलियां छील दी गई, कट गई, अब लिखित ने छू दिया वो ठीक भी हो गई। तब राजा ने सोचा इस वृद्धावस्था में दिन भर माथा पीछी कर रहा हूं पब्लिक से, इनसे बढ़िया न्यायाधीश कहां मिलेगा, ले ये चिट्ठी इसका भी न्याय कर दो। बोले राजन युद्ध की धमकी आई है, या तो गांडीवधारी अर्जुन और कृष्ण से युद्ध करो, या युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट के चरणों में मुकुट धर के समर्पण करो, कायदे से आपको युद्ध करना चाहिए। फौज तैयार हो गई, सुबह 10 बजे जो युद्ध के मैदान में जो नहीं हाजिर होगा उसको मृत्यु दंड, खोलते हुए तेल में डाल दो। सब तो हाजिर हो गए, उत्तथ्य एक घड़ी माने 23 मिनट, घड़ी उस टाइम यही नाप था, घंटे को घड़ी नहीं कहते। लेट आया तो लड़कों ने आदेश दिया कि इनको तेल में डाल दो, डाला वो जला ही नहीं। बोले अरे युवराज का कोई दोष नहीं था, ये किसी धर्म संकट में पड़े हुए थे, वास्तव में युवरानी ने कहा आप उस अर्जुन से युद्ध करने जा रहे हैं जो महाभारत का विजेता है, जिसके सारथी स्वयं नारायण ईश्वर परमात्मा है, हो सकता है वीरगति पा जाए, तो उत्तराधिकारी तो चाहिए ना, हमें आशीर्वाद देके जाएं। थोड़ी सी धर्म संकट पड़ गए उसको समझाने के लिए, थोड़ा रुकना पड़ा। वह इतनी सी बात इसलिए देर हो गई, जब फिर अपना फौजी ड्रेस पहन के खड़े हुए, उत्तत्य ने कहा, अर्जुन बात तो जरा सी, अर्जुन श्रेष्ठ योद्धा या उत्तत्य, इस फौज को क्यों मरवाते हो, इसने क्या बिगाड़ा है, आप हम दोनों लड़ ले तो? बोले, अरे तू मुझसे लड़ेगा, चला बाण। बोले, नहीं अर्जुन, युद्ध का आमंत्रण आप लेकर आए हैं, पहला बाण आप ही चलाएंगे। बोले, मैं चला ही दूंगा, तू लड़ने लायक बच जाएगा क्या? बोले, फालतू बात नहीं अर्जुन, नियम फिर नियम होते हैं। अर्जुन ने ऐसा हल्का सा बाण चलाया, रथ से गिर जाए, रथ चूर चूर हो जाए, रथ से गिर जाए, दांत टूट जाए, कपार फूट जाए, हाथ वार टूट जाए, हल्का बाण चलाया। उत्तत्य ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु यदि भगवान राम के समय में इस पृथ्वी से अधर्म सदा शांत हो गया हो, धर्म की भली प्रकार स्थापना हो गई हो, तिबाण मुस्तक न आवे। आदि दूर आया और अदृश्य हो गया। अब अर्जुन का पारा चढ़ गया, वो बाण चला कि रथ समेत उड़ जाए, गायब हो जाए। तो बोले, भगवान राम और कृष्ण के बीच के कार्यकाल में ऋषियों की चिंतन धारा में धर्म सुरक्षित रहा हो, तिबाण मुस्तक न आवे। वो भी आधी दूर आया और फिर अदृश्य हो गया। तब अर्जुन ने पशुपते अस्त्र के टक्कर का एक बाण उठा दिया कि नगरी ही निस्तेज नाबूद हो जाए, एटम बम उठा लिया। तब उत्तत्य ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर अब तक के कार्यकाल में एक बार पृथ्वी का भार उतर गया हो, धर्म की भली प्रकार स्थापना हो गई हो, तो ये बाण चले ही ना। वो खींचा खींचाया, चिपक गया, खिलौना चिपक जाता ना फिर भी कोल से। अर्जुन ने बहुत खींचा, बहुत झटका, वो चल ही नहीं रहा था। तब अर्जुन बिगड़ा कृष्ण के ऊपर, आप मेरे सारथी में मेरे रक्षक हैं, उस उत्तत्य के एक साधारण से व्यक्ति के सामने मेरी ये दुर्दशा? तब कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अर्जुन न मैं तेरा सारथी हूं और न ही मैं उसका दुश्मन हूं, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसी के साथ होता हूं। तुम्हारी अपेक्षा उत्तत्य की साधना और उत्कट है और आगे है, उसकी श्रद्धा समर्पण भाव पकड़ और उन्नत है, आगे है और डूब के लगा हुआ है, गले मिल ले वो बाण चला देगा तो तू कहीं का नहीं रहेगा। तो ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम, हृदय नच यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदाः। जहां मेरा भक्त जैसे जैसे गायन करता है, जितनी मात्रा में मैं वहां निवास करता हूं। अर्जुन सोचता था, भगवान रथ चलाते मेरे बराबर कोई नहीं भगवान का भगत। तब पता चला, रे एक से एक पड़ा, मैं तो पसंगा भी नहीं हूं इनके, इन भक्तों की चरणों की धूल हूं। अर्जुन जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। अर्जुन चिल्लाया, आप ऐसा सारथी प्रण पूरा नहीं हुआ, सिद्ध है कि भाग्य ही बलवान है। चिता पे चढ़ गया था जयद्रथ वध में ना, फिर मैं जन्म लूं और जयद्रथ का वध करूं, उसको विश्वास हो गया कि प्राण तो गया, भगवान ने बचा तो लिया। द्रौपदी चिल्ला उठी, आज यदि लाज नहीं बचाओगे ना तो जन्म भर मुंह से नहीं बोलूंगी, खिचड़ी भेजोगे तो कठड़ी नहीं खोलूंगी, सड़ जाएगी। 2500 उलाना रगड़ दिया, जो उन बिटियाएं दिया करती है वही मुसीबत नंदा नाई पर आई। नंदा नाई कोई नहीं जानता था कि भी भगत हो सकता है, वो गृहस्थ था, दुर्योधन का सेवक था। सुबह बाल साल मूछ सूझ बाल ठीक करके, नया वस्त्र पहना के, ठीक ठाक टिप टाप करके उसको सभा में प्रस्तुत करना, ये उसका काम था। साज सज्जा विशेषज्ञ था, ताकि दुर्योधन जब सभा में जाए तो जितने राजा महाराजा युवराज सबसे भड़कीला लगे। वो था भी बड़ा रोबीला, दिखाई देने के लिए दम भी तो था ही। एक दिन वो बड़े सवेरे चला महल की ओर युवराज को सजाने के लिए, तो 5-7 महापुरुष संत लोग दिखाई पड़ गए। संतों पे दृष्टि पड़ते ही भक्त था हृदय से भूल गया कि मैं काम पे जा रहा हूं, सेवा में लग गया। नहलाना धोलाना खिलाना पिलाना विदा करना, 3 बज गया। अब चला महल की ओर, कि वो विदा हुए चली चला महल की ओर, तब याद आया ओ मैं नहा धो के लोग सुबह तैयार होते हैं कि 3 बजे। इतनी भूल के लिए दुर्योधन ने मृत्यु दंड से नीचे कभी किसी को कुछ नहीं दिया, आज मौत निश्चित। बहुत खुश हुआ, वारे प्रभु इस अदम शरीर को एक दिन तो जाना ही था, आज प्रभु की सेवा में, संतों की सेवा में, प्रभु की राह में मेरा शरीर जा रहा है। भगवान को साष्टांग दंडवत किया, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में चल पड़ा। दुर्योधन दरवाजे पर मिल गया, बड़ा प्रसन्न, बोले अरे नंदा तुम लौटे कैसे? नंदा ने सोचा ये व्यंग्य बोल रहा है, कोड़े सोड़े मार के छोड़ देता जी प्राण तो बच जाते, मैं तो आया ही नहीं था। इतने में 5-7 मंत्री निकले, बोले नंदा तुम वापस कैसे आए? नंदा आज तुम्हारे शरीर में वो मोहनी थी कि पलक हटाने का मन नहीं कर रहा था हम लोगों का। तब नंदा चौका, बात क्या है? इतने में फिर दुर्योधन बोला, नंदा तुमने सेवा तो आयु पर्यंत की है, लेकिन आज तुम्हारे स्पर्श में जो आनंद था मैं भूला नहीं पा रहा हूं। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, जो चाहो प्रांत मांग लो, एक मांगो दो मांगो, मैं तैयार हूं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर। तब नंदा समझ गया, मेरे क्षुद्र प्राण बचाने के लिए प्रभु को इतना कुछ करना पड़ा, मेरा स्वरूप धारण करके इस दुष्ट के चरण तक दबाने पड़े। आंसू आ गए प्रेम के, बोले युवराज जब पारितोषिक ही देना है तो मुंह मांगा दो। बोले जो चाहो मांग लो, सरसब्ज केरला प्रांत मांग लो, सरसब्ज पंजाब मांग लो। तो बोले अच्छा, बोले युवराज इस्तीफा मंजूर कर लो, आज से सेवा करूंगा तो केवल प्रभु की, आप बने हरि नाई नंदा। वो कहां चिट्ठी लिखे गया रहा, भगवान किसी अनजान का नाम है क्या? वो हम संकल्प बाद में करते हैं, पहले ही भी जानते हैं। छोटा बच्चा कहता है क्या, मैं सीढ़िया से गिर रहा हूं, आओ हमें बचा लो। करहूं सदा तिन के रखवाली, जिमी बालक राखे मैं तारी। तो इसलिए दर्द वे बागहना, दर्द वे सिंगार बा, जैसी दर्द जैसी पीड़ा उसी मात्रा में भगवान हृदय में भगत के आगे पीछे होते हैं। दर्द के देवता बसिन मोरी छाती, दर्द के दियना जरे दीन राती, राम नाम मणि दीप धरो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। ये भजन की शुरुआत राम नाम मणि दीपक जीवा के देहरी पर रखो, भीतर प्रकाश बाहर प्रकाश, अंदर ने विकार का अभ्युदय होगा ने बाहर बाह्य वायुमंडल के विकार अंदर प्रवेश कर पाएंगे। दर्द वे बाडोलिया जिस पे चढ़ के हमें चलना है, जैसी श्रद्धा पूरी हृदय से लगोगे तो आपकी डोली आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की स्वरूप की ओर गतिशील हो जाएगी। दर्द वे कहार बा सो संतोष तप स्वाध्याय, इनका साधना का भार वहन करने वाला कहार जैसा प्रेम पूरी हृदय से लगोगे उतने ही संयम गहराता जाएगा। दर्द वे बाट डोलिया, शरीर ही एक रथ, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, ये शरीर ईश्वर की ओर सद के चलेगा कब, ये डोली उधर गतिशील कब, जब हृदय में पीड़ा हो प्रभु के प्राप्ति के लिए, स्नेह की पीड़ा हो। दर्द वे बाट डोलिया, दर्द वे कहां रबा, नाम रूप लीला धाम ये चार कहार हैं। दर्द वे मिल लेकिन सतर्क रहो, माया गश्त कर रही है, कहियो ये दर्द वे में लग जाई माटी, कभी इस दर्द में माया रूपी मट्टी ने लग जाए। साधक को सतर्क रहना चाहिए पूर्ति पर्यंत, कल प्राप्ति है तो आज माया कामयाब हो सकती है। दर्द वे हित नात, दर्द वे पड़ोसिया, साधक का भगवान में जैसा प्रेमास्पद प्रभु को पाने के लिए जैसी श्रद्धा प्रेम तड़प है, वही हितेशी है, वही सच्चा रिश्तेदार है, नाथ है। दर्द वे हित नात, दर्द वे पड़ोसिया, वही आपका पास पड़ोसी है, दूसरे को पड़ोस में मत बसने दो। जिंदगी के बनल बा दर्द वे संघाती, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। इस भगवान को खोज निकाले की कुंजी प्रेम है, ये प्रेम की स्तर उठता जाए, जिंदगी का बनल बा दर्द वे संघाती। भगवान ऐसे हैं, भगवान दयालु है, प्रभु के विषय में गुणगान करते रहना चाहिए, वही संग साथी है। दर्द वे बा कागज, दर्द वे स्याही, दर्द के कलम से लिखाइल बापाती। इन महापुरुषों के यहां कोई कागज कलम नहीं होता, भगवान से कुछ लिखा पढ़ी करना है तो स्नेह से भगवान के यहां अर्ज कर दो, काम पूरा हो जाएगा। सती अंशी आश्रम घनघोर जंगल, 8-8 किलोमीटर गांव है ही नहीं, बीच में एक आश्रम, 5 प्रकार के शेर, 2 प्रकार के भालू, बरसात में 2-2 महीने आदमी देखने को नहीं मिलेगा आदमी होता कैसा है। वहां गुरु महाराज का निवास। भगवान ने कहा यहीं रहना है, यहीं बैठो। अब बड़ी बड़ी मच्छर, लोगों को जब पता चला 50 किलोमीटर चारों तरफ में कोई डॉक्टर वैद्य नहीं, जंगली लोग बीमार पड़े, मर जाए चाहे जी जाए, 6-6 महीने से बीमारी में पड़े हैं खटिया में, गुरु महाराज का पता चला तो लोग आने लगे, महाराज मैं तो मर रहा हूं। बोले पटक मुड़ी खो विभूति दूने में से, पापी कहीं का पापी, पाप सारी तू करे और भोगे बाबा जी, गाली साली दे खो विभूति, तब खुश हो जा से। करे कब है बुखार का नंबर कब है? बोले महाराज कल है, कोई कहे परसों है, तिजारी चौथिया अत्रा ये बुखारों के नाम है। मलेरिया के बुखार 3-4 प्रकार के होते हैं, एक दिन छोड़ के आवे अत्रा, तीसरे दिन आवे तिजारी, चौथे दिन आवे चौथिया। देख आने का नंबर हो उसका नाम पारी, पारी बिता क्या देख क्या होता है। तो फिर दही सही लेके आवे, बोले महाराज बुखार तो नहीं आया? बोले जो बेटा गया बुखार, हजारों के बुखार उतर गए। महाराज को भगवान ने अनुभव में बताया तू तो जे के डांट फटकार दी है और तोर जो विभूति खा ले उसका बुखार खत्म, कैसी भी बीमारी खत्म। मृत्यु दंड है तो छड़ी मार दी तो मरी ना, कल फांसी होना है आज छड़ी मार तुम्हारी खा लेगा तो फांसी न हुई सजा चाहे जो हो जाए। और हजारों केस वहां पर, वो तो ठीक हो गए, चढ़ा महाराज को बुखार। अब गुरु महाराज शाम को 4 बजे बुखार आवे तो पारालेबल तो था नहीं, लेकिन महाराज की भाषा में एक पारालेबल था। महाराज कहो 9 भैंसे का बुखार आवे, शरीर हिला के धर दे। 9 भैंसा मतलब 8 पारालेबल तो होता ही है, महाराज का पारालेबल रहा 9 भैंसा। बुखार हिला के रख दे, लगे प्यास तो वो ऊपर आश्रम सरकत सरकत आवे, नदी किनारे पानी पिए, कई साल से आश्रम है, पात्र के नाम पर 1 खप्पर और कुछ नहीं, खप्पर भर के खूब पिए, फिर खप्पर भर के ले आवे गद्दी पर, इतने में प्यास तड़क जाए वो भी पी लें, फिर प्यास ज्यों की त्यों, फिर लौट के आवे, यही क्रम चलता रहा। एक दिन 4 बार आसन से नदी, नदी से आसन आने जाने में सब क्रम हो गए। तब बुखार की सनक में महाराज बोले भगवान से, इष्ट देव बने बैठे हो का? हमारे कर्म में एको चेला नहीं लिखा है? 2 घूंट पानी तो पिया दे ससुरा। अब इतना भयंकर 9 भैंसे का बुखार और प्यास पर प्यास लगती जा रही है, वो घोर जंगल में लाके पटक दियो, आगे कोई नहीं पीछे कोई, बुखार की सन कुछ कह दिया भगवान को भी, करी खोटी। तीसरे दिन महाराजों के नहीं पता हम क्या कहे, तीसरे दिन एक वैष्णव महात्मा आए, 60 साल करीब उम्र, तुरंत झाड़ू लगा दिया, खप्पर माज के पानी भर के लाके रख दिया, वो हाथ जोड़ के उतनी दूर खड़े रहे, खप्पर खाली हो जाए महाराज पी लें तो फिर लाके रख दें, दिन भर खड़े रहे। दूसरे दिन भी वही काम, रात दिन वही खड़े रहे, महाराज देखा करें बोले ही नहीं, एक चेले की सख्त जरूरत है, लेकिन महाराज बोले नहीं। महाराज किसी को फुसला के नहीं रख सकते, भगवान की अनुमति के बिना किसी को जगह नहीं दे सकते। तीसरे दिन भी खड़ा था, तब महाराज बोले, क्यों तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तो बोले, महाराज मैं वैष्णो संत हूं, 10 साल की उम्र से साधु हो गया था, अब 60 साल उम्र भली प्रकार निर्वाह हो गया निर्विघ्न महाराज। प्रयागराज स्नान कर रहा था, ये माघ मेला रहा होगा महाराज, 3 दिन लगातार सपन में दिखाई पड़ा, अब गंगा जमुना वाला स्नान पूरा हो गया, वो फल तुम्हें मिल चुका, जाओ सती अनुसुईया परमहंस जी की सेवा करो। तो हमने पहले दिन तो अनसुनी कर दिया, दूसरे दिन क्यों यहां पड़े हो, जाओ सेवा करो, तुम्हारा कल्याण इसी में है। फिर भी हम गंगा जमुना का मोह नहीं छोड़े, क्यों जन्म नहीं छोड़े। तीसरे दिन डांट पड़ी, जाता है कि नहीं तो जन्म भर ऐसे नहात नहात मर जाओगे, कुछ नहीं पाओगे, जाओ परमहंस जी की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण इसी में है। ऐसे नहात नहात ठंडे हो जाओगे, मेढकी हुई है, जाओ परिणाम यही कि परमहंस जी की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण इसी में है, तुम आगे गति उनसे प्राप्त होगी। तब धीरे छूट गया महाराज, गंगा जमुना प्रयागराज तीर्थ को हमने प्रणाम किया, सीधे गठरी मुठरी आसन बांधा और चले आए। तो बोले, कोई और ने हो महात्मा, जंगल लंबा चौड़ा ढूंढ ले अपने महाराज? बोले, नहीं गुरु महाराज, 3 दिन आप ही का दर्शन हुआ। फिर उस सेवा में लगे, पहले सेवक, प्रथम सेवक ये शिष्य राम लक्ष्मण दास का, महाराज बुलावे गए रहे हैं तो दर दुवे बा कागज, भगवान के विरह का ही कागज था, दर्द वे से आई दर्द के कलम से लिखाइल बापाती। भगवान को कह दिया, दर्द के कलम से इस देव बने बैठे हो, घोर जंगल में एक को चेला कर्म नहीं लिखा है का? तो दो गुण पानी तो ससुरा पिया दे। तीसरे दिन चेला आ गया, और जब तक जिया पानी पिलाया तो दर्द वे बा प्रभु मोर, जैसी जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तरह प्रगट सदा यही रीति। तो दर्द वे बा प्रभु मोर, ये रे की आंखी बिनु गुरु, लेकिन वो कब मिलेगा, भजन जागृत कैसे होगा, बिनु गुरु टूटे ना भरमुआ के टाटी, बगैर गुरु के जब तक में टूटे ना भरमुआ की टाटी, तो पूरा सदगुरु ना मिला मिली न साची सीत, भेष जति का बनाय के घर घर मांगी न भीख। तो भगवान की कभी श्रद्धा घटनी नहीं चाहिए, तो आसरा के घीवा सनहिया के बाती, और भजन की प्रेम कैसा हो, प्रेम एक विरह है, प्रेम एक तड़प है, तो दर्द का दीपक जरे दिन राती। भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। मथुरा में एक व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी था, उसका नाम था उद्धव। भगवान ने देखा कि मूर्ख अकारण जीवन काट रहा है, इसका भी उद्धार होना चाहिए। वो भाई लगता रहा। एक दिन भगवान मुंह लटका के बैठ गए। ज्ञानी उद्धव झूमते हुए उधर से निकले, बोले, कन्हैया इतना मुंह लटका रखा, ऐसी कौन मुसीबत आ गई? बोले, मैं दुखी हूं। बोले, मैं तुम्हारी पूरी पूरी सहायता करूंगा। बोले, उद्धव, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम जरूर मेरी सहायता करोगे। बोले, पहले दुख तो बता अपना। बोले, मैं कैसे समझाऊं उनको, गोपियां रात दिन मुझे बुला रही है वृंदावन में, देखो राजकाज कितना कठिन है, वो नाना जरासंध का रात दिन के हमले, 21 अक्षौणी सेना लेके कई हमला कर चुका है, फिर भी तैयारी कर रहा है, उधर काल यवन के हमले, ऐसी परिस्थिति में उग्रसेन हमारे जो नाना है अति वृद्ध है, राजकाज कितना कठिन है, उद्धव मैं कैसे जाऊं, उन्हें कैसे समझाऊं, यही दुख है। बोले, बेफिक्र रहो, मैं उनको ब्रह्म ज्ञान बता दूंगा, योग सिखा दूंगा, वो तुम्हारे वियोग में कभी नहीं तड़फेंगी। बोले, उद्धव जल्दी जाओ, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारा। अब ज्ञानी उद्धव जब वृंदावन पहुंचा तो करील के कुंजों में भगवान कृष्ण के वियोग में गोपियां सब, उस समय संकीर्तन का समय था, राधा जी के संरक्षण में सब भजन में तल्लीन होके हे कृष्ण हे गोविंद हे मोहन हे मुरारी कर रही थी संकीर्तन। उद्धव को देखते ही खड़ी हो गई, सादर प्रणाम किया और एक श्वास में 2500 प्रश्न लगातार कर दिया। उद्धव जी, आप तो मथुरा वासी हैं, हमारे कन्हैया को देखा, वहां ताजा माखन मिलता है कि नहीं, कदम के पेड़ हैं कि नहीं, झूला कौन कौन झूलाता है, खेलने के लिए लड़के ढंके हैं कि नहीं, उनको नहलाता कौन है, उनको टीका कौन लगाता है, रोज ताजे मोर पंख मिलते हैं कि नहीं, प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। तब उद्धव बोले, क्या भेद भक्ति में पड़े हो, छोड़ो कृष्ण को, तुम आत्मा हो, तुम ही शाश्वत सत्य हो, शरीर तो एक वस्त्र है, ये सब देख सुन रहे हो सब माया है, बर्फ में और पानी में फर्क नहीं, ऐसे तुम में और उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, तुम अपनी आत्मा में देखो, तुम ही पूर्ण पुरुष, तुम ही शाश्वत सत्य, तुम ही सनातन हो, अभेद देखो, तुम ही हो भगवान। तो राधा बोली, उद्धव जी मनन भय 10-20, मन 10-20 नहीं हुए, एक था, एक होता सो गयो श्याम संग को अवरा दे ईश, उद्धो मनन भये 10-20, एक रहा श्याम के साथ चला गया। अब दूसरा मन कहां पाए जो आपकी योग साधना रटे, इंद्रिय शिथिल भय के सो बिनु जो देही बिनु शीश, इंद्री इतनी शिथिल हो गई केसों के बिना, सिर कट जाने पर जैसे धड़ पड़ी रहती है, मतलब इंद्रिय संयम इतना सद गया, जिंदी कैसे हो, श्वासा अटक रही आशा लगी, जीव हो कोटि वरीस, उद्धो मनन भये 10-20, श्वासा अटक रही आशा लगी, इस आशा में अटकी हुई है कि भगवान ने वचन दिया है मैं अवश्य आऊंगा, भगवान झूठ नहीं बोलते, जरूर आएंगे। किसी संकट में है, किसी काम काज में उलझे हुए हैं, इस आशा में अटकी हुई है, करोड़ वर्ष तक श्वास अटकी रहे हम प्रतीक्षा करेंगे। आप तो सखा हैं श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश सूरदास, वह रस की महिमा सो जानत जगदीश, उदो मनन भय दस बीस। उदो चक्का बक्का हो गए, हम ज्ञान सिखाने गए थे, हम बोलिए बंद हो गई। सूरदास कहते हो भगवान के प्रेम ब्रह रस की महिमा या तो भगत जानता है या भगवान। सो जानत जगदीश उधो मनन भय दस बीस। उधो जी अपन ब्रह्म ज्ञान त्याग के चरणों में लौट गए राधा जी के, गए थे चेला मूड़ने, खुद ही हो गए चेला। खड़े होके जब देखा तो राधा और गोपियों के बीच में कृष्ण भगवान खड़े थे। बोले अरे कन्हैया तू यहां पर? बोले हाँ भैया, मैं मथुरा में हूं ही नहीं, जहां भगत मेरा सुमिरन करते मैं वहां हुआ करता हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। इसलिए भगवान को ना एक मिट्टी के ढेले का नाम थोड़ा ही है। जहां आप स्मरण करो आपकी खटिया के पास से, आपके हृदय में प्रकट हो गए, वहीं से जागृति तो होना है। असंख्य अनंत रूप में है, आपके साथ है। उद्धव जी को भगवान वहां दिखाई पड़े। एक महीने बाद कृष्ण ने पूछा यार उद्धव नहीं दिखाई देते? बोले वो बगीचा में बैठ के आंख मूंद रहे भजन करने लगे, गए थे चेला मूड़ने, खुद ही चेला हो गए। इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं, जरूरत है तो केवल प्रेम की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।